the neighborhood,
there was a person called Shastri. And we used to think, so he was a very big person, the principal of a college, very prestigious college in Calcutta. And we used to think that Shastri was a very big scholar. Now after coming to ISKCON, I realized that yes, Shastri means a very big scholar, especially those who are Bhakti Shastris. Actually, this system started by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, giving the titles to the devotees. And Srila Prabhupada also adopted that same system. Prabhupada actually made a little modification. Like, I think he added a few things. I'll tell you. The first is Bhakti Shastri. Yeah, that's the thing. When I was young in my neighborhood, this person was a very big scholar, a very renowned scholar, and his name was Shastri. So I used to think that Shastri has been big scholar. But after coming here in ISKCON, I found out that our scholarship begins with Shastri. So first title one gets is Bhakti Shastri. Then after Bhakti Shastri is Bhakti Vaibhav. And after Bhakti Vaibhav is Bhakti Vedanta. After Bhakti Vedanta is Bhakti Sarvabhauma. And you know what Prabhupada said? Prabhupada said when? That he wants that all his disciples within 5 years' time should all be Bhakti Vedantas. And when they become Bhakti Vedantas, they will start giving initiation. So the basic qualification for becoming a spiritual master, Prabhupada established, is Bhakti Vedanta. And Prabhupada wanted his devotees, that the devotees in ISKCON should assume the title Bhakti Vedanta, which was actually his title, his name, Bhakti Vedanta. And in 1977, during Gaur Purnima time, the first Bhakti Shastri exams took place. And you know how the exams were held? In Mayapur, those days, we had only one building, which is known as the Lotus Building. How many of you have gone to Mayapur? And how many of you have seen the Lotus Building? Okay. So that was the first building. In Lotus Building, ground floor was the temple, Radha Madhav's temple. Those days the deities of Radha Madhav were very small, Ashtadhatu deities of Radha Madhav. In one end of the hall was Radha Madhav altar, and on the other end of the hall was Srila Prabhupada's vasis. And so that was the only building, and that was the guest house. Prabhupada's quarters also was in that building on the second floor. And then on the first floor of that building, the ground floor of the temple, and the Bhakti Shastri examination was held on the veranda of that first floor. There's no tables, no chairs. They all were sitting on the floor and writing the answers. And that is how the Bhakti Shastri course started. And very wonderful thing to note from that class was, or that from that exam was, that whoever participated in that Bhakti Shastri course passed the exams. So I'm sure they must have, those who sat for the exams were very serious. Those days, yes, devotees were very serious. We did not waste any time those days. Whatever free time we used to have, what we used to do, oftentimes I told you, when you have free times, how to utilize your free time? Sit together in a group, take Krishna book, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and read. Those days, I was amazed to see some of our God brothers, American God brothers, they knew every single translation of every single verse of Bhagavad Gita. They didn't know the Sanskrit shlokas of all the shlokas of Bhagavad Gita, but they knew every single translation. The translation of every single verse. And once I was amazed, like, I was actually checking. This was one God brother of ours. His name was Chitsukananda. And I was asking him, I read the translation, and he told the number, which chapter, which verse. They were so brilliant, actually. The devotees used to study so carefully, so intensely those days, so sincerely. So that was one thing in the early days. The devotees were very, very serious about the spiritual life. As I was saying, we did not waste time. And those days, most of the devotees were actually Americans and Europeans. There were very few Indians. Even in Mayapur, there were very few Indians. Even in Vrindavan, very few Indians. These were our main temples: Mayapur, Vrindavan, Bombay, and Calcutta. Most of them were Western devotees because the Indian participation was not very high in those days. And devotees were so serious, so sincere. Like in Mayapur, in the evening, we used to have the evening arati, we used to have a Bhagavad Gita class, and after Bhagavad Gita class, we used to get the Mahaprasad. And we used to sit around the Mahaprasad and have the Mahaprasad sweets and whatever, puri, sabji, halwas and so on. And we used to sit around that Mahaprasad plate, and one devotee used to serve little to everybody. There are not so many devotees. But after taking Mahaprasad, what we used to do? We used to sit down and discuss about spiritual subject. So, make it a point that our business is to study. Our business is to learn. We should not waste our time. Whatever little time we have, yes, everybody has service. We used to have a lot of service also those days. But whenever we had free times, we used to just read the books. One thing I'll tell you, I'll ask you, how many of you carry Bhagavad Gita with you all the time? Very good. But you know those days, how many of us used to carry Bhagavad Gita? All of us. We used to have a bag, and in that bag, one thing we had was a Bhagavad Gita. Now, of course, maybe you don't have to carry Bhagavad Gita. You can carry the entire Veda base with you in your computer. Even in your phone you can do that. Can it help? That is, now we have the pocket Vedas. Pocket Vedas? So pocket Vedas has all of Prabhupada's books. And you can keep it in your phone. Does it take pocket Veda in any phone, or it has to be an Android?
iPhone
is Android. iPhone, Samsung. It has to be an Android phone. How many of you have big phones? iPhone, Samsung. How many of you have small phones? Let's see, what's your phone like? Somebody's phone started to ring. Will that take Android? I mean, that's not Android. Android means that is bigger. Anyway, you can consider. Like those who have Android phones, iPhone, Samsung, Nokia also have. Anyway, everything has Android phones. And in that you can have a Veda base. It's a good way to spend your time. That's another kind of video game. Reading Prabhupada's books. So how many, again, once again, how many of you are studying Bhakti Shastri? Here, doing the Bhakti Shastri course? Okay. So do you find it beneficial? This Bhakti Shastri course is in English or Hindi?
Mm-hmm.
Hindi. Today I was supposed to speak in Hindi? और मुझे पता ये याद नहीं था कि शायद ये बताया था अभी कल कि ये भक्ति शास्त्री का क्लास हिंदी में होना है तो हिंदी अंग्रेजी समझने में किसको दिक्कत होता है और अगर हिंदी में मैं बोलते हैं तो कौन कौन समझेंगे अच्छा तो ठीक है तो मैं हिंदी में ही जो मैं बताया उसका संक्षेप में बताने का कोशिश करूंगा ये शास्त्री शब्द का अर्थ क्या है जिनको शास्त्र ज्ञान है वो है शास्त्र तो हमारा जो ये भक्ति शास्त्री है ये केवल शास्त्र ज्ञान ही नहीं भक्ति शास्त्र को ज्ञान भक्ति शास्त्र में बहुत सारे पंथा का वर्णन किया विशेष रूप से वेद का तीन विभाग है कर्मकांड ज्ञानकांड और भक्ति कर्मकांड जब भक्ति के साथ होता है तो उसे कर्मयोग कहा जाता है ज्ञानकांड का जो ये है वो जब भक्ति के साथ होता है तो वो ज्ञान योग बनता है और जब भक्ति शुद्ध रूप में प्रकाशमान होता है प्रकट होता है ज्ञान और कर्म के अलावा उसे शुद्ध भक्ति कहा शुद्ध भक्ति का लक्षण किसको पता है याद है शुद्ध भक्ति का लक्षण ओके यू गाइस तुम बताओ वेरी गुड अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम यह है शुद्ध भक्ति का लक्षण Anna Abhilasha. Anna Abhilasha matlab bhautik sukh bhog ka ichcha. Bhog karne ka jo ichcha hai use Anna Abhilash ka. Anna Abhilash kyun? क्योंकि भगवान की सेवा को छोड़कर और जो कार्य है वो है अन्न अभिलाषा. और भगवान को हम दो कार्य में युक्त हो सकते हैं, या तो हम भगवान की सेवा में युक्त हो सकते हैं और नहीं तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए युक्त हो सकते हैं. और इसके अलावा अगर तीसरी पंथा है तो वो है निद्रा, अचेतन अवस्था. तो ये दो क्रिया जो है, कार्य है, एक है भोग और दूसरा है सेवा या भक्ति. भोग का मतलब क्या है? अपने सुख आत्मेन्द्रिय प्रीतिमांछा, अपना इंद्रियों को तृप्ति साधन के जो वासना और प्रचेष्टा, उसे भोग कहा जाता है. भौतिक जगत को भोग करने का इच्छा. तो ये भोग के परे है भगवान के साथ, भगवान की सेवा. भगवान की सेवा में से पहला कदम जो है वो है कर्म योग. हम जो कार्य करते हैं वो कार्य जब भगवान के लिए होता है, या कार्य का फल जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसे कर्म योग कहा जाता है. जत करोसि जदस्नासि जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्योषी कौंतेय तत्पुरुष्य मरणम. यह है कर्मयोग का संज्ञा. जत करोसी, जो तुम करते हो. जत अस्नासी, अश्नासी, जो तुम खाते हो. जत जुहोसी, जो यज्ञ तुम करते हो. ददासी जत, जो कुछ तुम दान करते हो. जत तपस्वी, जो तपस्या तुम करते हो. तत्पुरुष मदर, ये सब तुम केवल मेरे लिए करो. तो ये क्रिया या कार्य जब भगवान के लिए होता है तब वो कर्म योग. और कर्म के पश्चात है ज्ञान. कर्म के परे ज्ञान. भोग की इच्छा त्याग करके जब भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होने का जो प्रयास और भौतिक जगत का स्थिति और आध्यात्मिक जगत का जो स्थिति, इसके बारे में जब जानकारी के जो प्रयास है वो है ज्ञान. तो ये ज्ञान जब भगवान के लिए संपादन होता है तो वो है ज्ञान योग. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां. यह है ज्ञान योग की लक्षण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत मतलब आध्यात्मिक स्थिति. भौतिक जगत के परे जो चिन्मय जगत है, उस चिन्मय जगत में जो स्थिति है उसे ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है. ब्रह्मभूत अवस्था में दिल, हृदय संपूर्ण रूप में प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के जितने सारे उलझन हैं वो सब उस समय दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत के परे चले जाते हैं. तो इसलिए उस स्थिति में कोई दिल में कोई उलझन, मन में कोई चिंता, चिंता नहीं रहता, कुंठा नहीं रहता, उद्वेग नहीं रहता। प्रसन्न आत्मा तब न शोचती न कांक्षती। शोचती का मतलब क्या है? जो हम खो गए हैं, खो बैठे हैं, उसके लिए जो कष्ट, वो है शोक। जो हम खो गए, खो बैठे हैं, उसके लिए जो अनुताप होता है वो है शोक। और कांक्षति, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए जब हम आकांक्षा करते हैं उसे कांक्षति। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब चाहने का, मिलने का इच्छा। न सोचती, तो उस स्थिति में, ब्रह्मभूत स्थिति में ना तो कोई शोक रहता है, ना तो कोई आकांक्षा रहता है, तभी मन पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। न सोचती न कांक्षती, और तब समा सर्वेषु भूतेषु। भूतेषु, भूत का मतलब है यहां प्राणियां, जीव, सारे जीवों के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, या पेड़ पौधे हो, कीड़ हो, कीड़े हो, सबको प्रति उनका समदृष्टि रहता है। समा सर्वेषु भूतेषु, उस स्थिति में उनको शत्रु मित्र का बोध नहीं रहता। नहीं तो भौतिक स्थिति में हम क्या सोचते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा नजदीक है, वो मेरा, उससे मैं दूर रहना चाहता हूं। ये जो मनोभाव, ये मनोभाव दूर हो जाता है, तब उस स्थिति में समा सर्वेषु भूतेषु। उस स्थिति में ये वो व्यक्ति समदर्शी हो जाते हैं। समा सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्ति लभते परा, मेरे पराभक्ति प्राप्त हो सकते हैं उस स्थिति। तो ज्ञान ऐसे हम देखते हैं, कर्म जब भगवान के लिए होता है तो होता है कर्म योग, जब ज्ञान भगवान के लिए होता है तो वो होता है ज्ञान योग। बल्कि ज्ञान और कर्म में भी भौतिक जगत का, भौतिक जगत का प्रभाव रहता है। Why are you taking the phone here? Switch off the phone.
Someone was coming.
No, switch off the phone. Just standing, sitting in front of me and just answering the phone. What kind of attitude is that? So, समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परम। कर्मयोग और ज्ञानयोग के परे जो स्थिति है, जिस स्थिति में कर्म का प्रयास भी नहीं रहता है, ज्ञान का प्रयास भी नहीं रहता है, मतलब केवल भगवान के संतुष्टि विधान के लिए ही जब प्रयत्न होता है, प्रयास होता है, वो है शुद्ध। तो ये शुद्ध भक्ति का ही जो आचार और अध्ययन, वो है भक्ति शास्त्री का उद्देश्य। हम कौन सी शास्त्र अध्ययन करते हैं? जिस शास्त्र के माध्यम हमें शुद्ध भक्ति मिलता है। इसलिए हम केवल दो मुख्य शास्त्र ही हमारे प्रधान, हम प्रधान रूप में ग्रहण करते हैं। वो दो शास्त्र कौन है, क्या है? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। वेद का ज्ञान का प्रवाह दो रूप से बहती है, एक है उपनिषद और दूसरा है पुराण। उपनिषद और पुराण, सो सारे उपनिषदों में जो श्रेष्ठ उपनिषद है, उपनिषद है। उपनिषदों में से श्रेष्ठ उपनिषद को क्या है? गीतो उपनिषद। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन वत्स्य पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सर्वो उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद को एक, सारे उपनिषद है, उपनिषद है एक गाय जैसे। दुग्धा गोपाल नंद, वो गाय को दोहन करने वाला कौन है? गोपाल नंद, गोपाल गाय को रखवाला गोपाल नंद। और वत्स्य पार्थ, गाय का बछड़ा है कौन? इस गाय का अर्जुन पार्थ। और उस गाय का दूध क्या, कौन क्या है? भगवद गीता। और वो दूध कौन पीते हैं? भोक्ता सुधीर भोक्ता। सु मतलब सुंदर श्रेष्ठ, और धी मतलब विचार करने का क्षमता, बुद्धि। जिसका बुद्धि बहुत सुंदर है या श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति ही इस दूध को पीते हैं। और वो दूध कौन सी दूध है? ये दूध क्या है? दुग्धामृतम है, भगवद गीता। तो इस तरह हम देख रहे हैं सारे उपनिषदों में से, सारे उपनिषदों का निर्यास क्या है? भगवद गीता। और वैसे जो पुराण है, पुराण की धारा में श्रेष्ठ है भागवत पुराण, महापुराण, श्रीमद् भागवतम, निगम कल्पतरुर गलितं फलम्। निगम वेद है एक कल्प वृक्ष जैसे, निगम कल्पतरु वेद रूप जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कौन सी वृक्ष है? हमारे आसपास में जो वृक्ष है वो सब कल्प वृक्ष है, क्यों नहीं? अंतर क्या है? हाँ, वेरी गुड। कल्प वृक्ष के पास हम जो कुछ चाहते हैं वो मिलता है। आम की पेड़ के पास अगर हम जाएं तो केवल आम मिलेगा, नीम के पास जाएंगे नीम मिलेगा, ऐसे सेब अंगूर वृक्ष है, बल्कि उसका फल एक प्रकार का, बल्कि कल्प वृक्ष है वो ऐसी वृक्ष जिसके पास जाने से सब कुछ हमें मिलता है, जो कुछ हम चाहते हैं। वेद है वैसे एक कल्प वृक्ष, क्योंकि वेद की, वेद से हमको सब कुछ मिल सकता है, जो कुछ हम चाहते हैं अगर हम वेद के अनुवेद को अनुसरण करेंगे तो हमें मिल जाए जो कुछ हम चाहते हैं। तो इसलिए वेद है एक कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरु गलितं फलम, फल जो वृक्ष सब कुछ देता है उस वृक्ष का फल कैसे होगा सोचो। और वो फल भी कैसी है, गलितम एकदम पका हुआ गलितम फल। और उसके साथ भी सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख सुख क्या है, सुख है एक पंछी, सुख पंछी ऐसे कहावत है कि जब ये सुख सुख पंछी उसको क्या बोलते हैं, तोता 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 जब कुछ फल को ये करते हैं ठुकराता है तो फल और भी मीठा हो जाता है। तो वैसे ही ये जो निगम रूप वेद रूप कल्प वृक्ष का जो पका एकदम बिल्कुल पका हुआ जो फल है वो फल शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुखामृत के साथ वो युक्त हुआ है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवतम को पाठ किए थे, वर्णन किए थे, सुनाए थे। सुक मुखाद अमृतम अमृत द्रव संयुतम। और यहां भी पीग पीवत भागवत रसमालयम मुहुरह रसिका विभाग, ये जो भागवत का जो रस जो है वेद रूप कल्प वृक्ष का सुपक का फल जो सुखदेव गोस्वामी के मुख मुख मुखामृत से युक्त हुआ है वो कौन पान पीते हैं या कौन आस्वादन करते हैं, रसिका जो सही रूप से रस आस्वादन करना करना चाहते हैं या जानते हैं, जो सही रूप से रस आस्वादन करना जानते हैं उसे रसिक कहा जाता है। तो वैसे जो रसिक हैं और वो भूमि भावुका चिंताशील व्यक्ति जो रस आस्वादन करते हैं या दुनिया के जितने सारे चिंताशील व्यक्ति हैं ये सोचो ये रस कौन आस्वादन करते हैं, वही करते हैं जो रसिक है भूमि भावुका पीवत भागवतम रसमालयम रसम आलयम, सारे रसों का जो आलय या आधार है स्रोत है उसको आस्वादन। तो ऐसे हम देखते हैं पुराण का निर्जर्ष क्या है, श्रीमद् भागवतम और उपनिषद का निर्जर्ष है भागवत। तो भक्ति शास्त्री में तुम लोग भगवत गीता 6 अध्याय पाठ करते हो, कितने अध्याय भक्ति शास्त्री में होता है,
पूरा होता है,
ओके वेरी गुड, पूरा भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम
भागवतम नहीं होता, भगवत गीता ईशोपनिषद उपदेशामृत और भक्ति रसामृत
सिंधु, ओके ये भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्व लहरी फर्स्ट वेव फर्स्ट वेव। तो बहुत अच्छा से इस ज्ञान को आस्वादन भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता में कितने सुंदर रूप से विचार हुआ है, भगवान स्वयं ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान इस ज्ञान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। इनमें से तीन भाग हुआ है, पहला 6, बीच के 6 और अंत का 6। प्रथम 6 अध्याय में कर्मयोग का वर्णन हुआ, बीच के 6 में भक्ति का वर्णन और अंत का 6 में ज्ञान का। बल्कि असल में हम देखते हैं सारे भागवत गीता में भक्ति का ही वर्णन हो, यद्यपि कर्मयोग का भी चर्चा हो रहा है। बल्कि अंत में क्या भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे 6 अध्याय में, 6 अध्याय का अंतिम श्लोक के पहले जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, किसको याद है? यस,
योगी नाम सर्वेषां,
दैट इज द लास्ट, द वन बिफोर दैट, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यश्च मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्थः। भगवान अर्जुन को योगी बनने का निर्देश दे रहे हैं। इस अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन हुआ है, अष्टांग योग का वर्णन करने के पश्चात भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन तपस्वियों में से श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानियों में से भी श्रेष्ठ है योगी, कर्मी में भी इससे श्रेष्ठ है योगी, इसलिए तुम योगी बनो, तस्माद् योगी भगवान योगी बनो। ऐसे भगवान हम देखते हैं कि भगवान योग के प्रशंसा कर रहे हैं, अष्टांग योग। बल्कि उसके पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं, योगी नामोपि सर्वेषां, सारे योगियों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नामोपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मनः, जिसकी अंतरात्मा मेरे और युक्त हुआ है। मदगतेन अंतरात्मनः, मदगतेन अंतरात्मनः, श्रद्धावान भजते जो मां, श्रद्धाशील ओ व्यक्ति जो हर समय मेरा ही सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भजते जो मां सौ में युक्त तमोगता। तो अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं, भजते जो मां, भजते ये भक्ति शब्द का मूल क्या है, भक्ति शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, भज धातु से। तो भजते, जो भजते का मतलब है भक्त, जो भक्ति करते हैं, भजना करते हैं, श्रद्धावान भजते जो मां सम में युक्त तमो मत, युक्त युक्ततर युक्ततम, युक्ततम का मतलब है रिलेटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। सबसे गहरा रूप से मेरे साथ युक्त हुए, जो का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ युक्त हो। तो जो भगवान को भक्ति करते हैं, भजते जो मान श्रद्धावान समय युक्त तमो, तो सारे योगियों में से श्रेष्ठ कौन है, भक्त। इसके पश्चात सप्तम से द्वादश अध्याय तक भक्ति का ही वर्णन है। और बाद में 13 से 18 में भी वैसे ही भक्ति का ही निर्णय हो रहा है। पहले भगवान जो प्रकृति पुरुष विवेक योग, प्रकृति और पुरुष का वर्णन कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, एवं सतत युक्ता जी भक्तास्तां परिजुपाशते। जे चापी अक्षरम अव्यक्तम तेषां की जो व्यक्तम। अब उसके पास पश्चात अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, एवं सतत युक्ता जे जो व्यक्ति सतत भक्तास्तां परिजुपाशते, और जो जे च अपि अक्षरम अव्यक्तम, मतलब निर्विशेष रूप में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, या निर्विशेषवादी और सविशेषवादी में दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैया विश्व मनोजेमा, जो इसका जो मई आवेश मनोजेमा नित्य युक्त उपाशते सर्वत्र गम अशुद्धया पराया पेतास्तमे युक्त तमाम सॉरी श्रद्धया पराया श्रद्धा के पर श्रद्धा के साथ जो भगवान को सेवा करते हैं वही श्रेष्ठ है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं श्रेष्ठ को पंथा क्या है, अर्जुन पूछ रहे हैं या भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। श्रद्धया परया ते पेतास, तो श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में युक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है। तो देखो कितने सुंदर रूप से भगवान स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत निर्णय कर, तो उसको ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान जो बता रहे हैं उसको ही ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे भक्ति शास्त्री, ये शास्त्र के माध्यम हम भक्ति को ही निर्णय कर रहे हैं। तो तुम लोग बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है भक्ति शास्त्री करते हुए, अच्छा लग रहा है, भक्ति दृढ़ हो रहा है करने से, बहुत अच्छा। इसलिए ही शास्त्र अध्ययन का जरूरत है। हम क्यों कर रहे हैं उसको जवाब हमें मिलता है, क्यों कर रहे हैं हम ये मार्ग, क्यों अपनाए हैं, क्यों ग्रहण किए, क्यों ग्रहण किए, ये विचार हमें करना है। क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है, पहले पहले जब जोड़े थे उतना अच्छा पता नहीं था, अच्छा लगा ठीक है ये मार्ग सही है इसलिए हम अपनाया, बल्कि धीरे धीरे हमको ये जानकारी हो रहा है कि ये ही श्रेष्ठ मार्ग है। हम तो साफ साफ कहते हैं आज तक हमें ये ही श्रेष्ठ मार्ग मिला है, इससे बढ़कर कोई मार्ग अगर आपको पता है हमको बताइए, हम चलेंगे उस मार्ग। वैसे ही हमको विचार होना चाहिए, और कोई मार्ग अगर इससे भी श्रेष्ठ है तो हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक ये है कि जो श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करना। जब हम बाजार में कुछ मोलने को जाते हैं तो हम क्या चुनते हैं?
श्रेष्ठ।
जिसको पास पैसा नहीं है वो आलतू फालतू माल खरीदेगा, बल्कि जिसके जेब में बहुत सारे पैसा है वो क्या फालतू माल के पीछे जाएंगे? वो श्रेष्ठ माल खरीदेंगे। Hare Krishna. So we have about 7 minutes for some questions and answers. कोई प्रश्न है किसी को? तुम सब चले आए हो मंदिर में तो आरती में कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग होंगे आज शायद। ठीक है, एनी क्वेश्चन?
जैसा आपने बताया कि 5 साल में भक्ति वेदांत तक हो जाना चाहिए, जैसा चाहिए
तो पर बोले
तो आजकल के परिवेश में भी ये बात लागू होती है क्या?
देखो असल बात तो ये है कि जो कोर्स हमको बना है इस काम में, भक्ति वैभव तक बना है, भक्ति वेदांत का कोर्स अब तक नहीं बना, बनेगा बल्कि अब तक नहीं बना है। इसका शायद एक कारण ये है कि जो सीनियर डिवोटीज जो हैं उन लोग में इतने व्यस्त हैं ये सामान सारे मैनेजमेंट में। जैसे बीआईएचई जब शुरू हुआ था 87 में, हम लोग शुरू किया था, तब उस समय हम बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ये किया और पूरा कार्तिक महीना हम वृंदावन में रहते थे, कोर्स होता था, बल्कि 89 से हम और नहीं जा पाए। 89 में गया था बल्कि 90 से हम वृंदावन में एक महीना रह नहीं पाए कार्तिक के समय, क्योंकि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए। बल्कि मेरा ख्याल है धीरे धीरे होता रहेगा, होगा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो देन यू कैन गो टू द टेम्पल। आप कहां से आए हैं?
वो जन्म कहता हूँ विशीनगर।
ओह अच्छा, अच्छा मंदिर में आते हैं?
मंदिर में आओ।
अच्छा, कब से आ रहे हैं?
5 मई से। 5 मई से रोज आते हैं।
ओ, रोज आते हैं, बहुत अच्छा। क्या करते हैं आप?
मैं लिखता हूँ किताबें।
हाँ, लिखते हैं। ओ अच्छा, कोई अर यू कनेक्टेड टू सम न्यूज पेपर? कोई कोई पत्रिका के साथ जुड़ते?
पेपर
सुन तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, फील वेरी गुड। कैसा लगता है यहाँ का वातावरण?
बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ।
बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
मनीष श्रीवास्तव।
मनीष श्रीवास्तव, हरे कृष्ण। ओके, सो नृसिंह आरती के बाद मैं मंदिर में कीर्तन करूंगा। हरे कृष्ण।
भक्तिचार्य स्वामी महाराज की, गुरु श्री प्रभुपाद की।